रात की रानी की खुशबू से कोई ये कह दे आज की शब न मेरे पास आए। परवीन शाकिर तो चली गई, चंद साल हुए मैंने उन्हें एक खत लिखा था और आखिर में ये कहा था कि अगर आप इसे छापना चाहें तो मेरी तरफ से इजाज़त है। इस तरह गोया मेरी उस अकीदत का बरसरेआम जिक्र हो जाएगा जो इन सत्रों में है। अब इसे खिराज समझिए, मैं वो ख़त आपको सुनाई देता हूँ। ए परवीन शाकिर, लंदन में रह रहकर ये शेर पढ़ता रहा, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। दो एक लोगों से पूछा कि ये शेर किसका है, जब मालूम हुआ तो इश्तियाक हुआ कि ये जानूं कि ये शायर किस उम्र की हैं। मुझे शायरा और मुसन्निफा और मुसव्विरा मोहम्मल सा लफ्ज़ लगता है। उम्र का जिक्र सिर्फ इसलिए हुआ कि मुझे ये महसूस हुआ कि ये शेर अधेड़ उम्र या पुख्ता उम्र के शायर का नहीं, शायद अनवर मकसूद ने बताया कि जवान शायर हैं। फिर एक शेर कान में पड़ा, या खुदा अब तो कोई अब्र का टुकड़ा बरसे, बच्चियां लाई हैं गुड़ियों को जलाने के लिए। मैंने सोचा ये शेर और ये लहजा भी परवीन शाकिर का मालूम होता है। मैं अभी ये तस्दीक नहीं कर पाया था कि मुझे टेलीविज़न के एक ऐसे कारकुन ने जो तमाम हमअसर शायरों के अच्छे कलाम को इस तरह सुनाते थे कि हर अच्छा शेर सिर्फ उनके अपने वजूद की वजह से अमल में आया, ये शेर सुनाया। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। अब ये वाकया है कि पहली बार इस शेर को सुनने के बाद अपने मुल्क के हसास, एक दूसरे के काम की बेहद तारीफ करने वाले लोग अपने ऊपर वजदान की कैफियत असल में इसलिए तारी कर लेते हैं कि उन्हें इस शेर में एक मुकम्मल निस्वानियत से भरपूर, मशरकियत से सरशार लड़की नज़र आती है। वो औरत क्या हुई कि हर वक्त जरा करती रहे, और फिर इस शेर में तो उन्हें औरत नहीं एक गुदाज सी लड़की नज़र आई जिसमें अभी कोई पक्कापन नहीं आया। हमारे मर्दों की अना की परवरिश के लिए इससे बेहतर और शोख शेर कहाँ नसीब हो सकता है। फिर मुझे कुछ और शेर सुनाए गए, शायद इसलिए कि लोगों को एक गलत किस्म का ख्याल है कि मैं बहुत शेर फहम हूँ, हालांकि बहुत सों की नस्बत कई अशार मेरी समझ में बहुत देर में आते हैं। कैसे कैसे शेर, कमाल जब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथों से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, तू बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें अपने हाथों की लकीरों से उलझ जाती हैं, तूफान है तो क्या गम, मुझे आवाज तो दीजिए, क्या भूल गए आप मेरे कच्चे घड़े वो। हमारे यहाँ के मर्दों और शायद इफ़त माब लड़कियों के लिए भी ये तीनों शेर अना बख्श असनाद हैं। मर्दों को ये कहने का मौका मिलता है, वाह वाह ये देखिए, एक तन्हा भीगी भीगी पलकों से पैरास्ता, सखियों की सखी लाज की वंती, मगर सूरह रहमान से वाकिफ, अंग्रेज़ी अदब से वाकिफ़, और शुक्र है बगावत पर आमादा नहीं, तमाम घरेलू अच्छाइयों से भरपूर, तमाम मकामी तौर तरीक़ों से बाखबर, तमाम अच्छी मुआशरती कदरों की हमदर्द, वाह वाह। तकरीबन एक साल बाद मुझे किसी ने बताया, मैंने फिर अनवरी से पूछा, बताओ भाई परवीन शाकिर ने इस मसले पर क्या कहा है या उस मसले पर क्या कहा है, कुछ अछूती बात तो कही होगी जिससे अधेड़ उम्र के मर्द आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखकर बेसाख्तगी से हाथ पर हाथ मारेंगे और बग़ैर कुछ कहे ये साबित करेंगे कि समझा के अभी गई हैं सखियाँ और दिल है कि फिर मचल रहा है, कि पीछे जो तड़प और जज्बा है वो सिर्फ उनकी गिरफ्त में है और लड़कियों की इस किस्म की जलन और ख्वाहिशों को इनके अलावा और कौन समझ सकता है। मुझे इस किस्म की तनकीदी नसर बहुत बेमानी लगती है जिसमें इस तरह के फ़िक्रे हों कि परवीन के नाम से जो एक कली चुटकी है उसने फ़जा को नई महकारों से मामूर कर दिया है, या परवीन शाकिर की आवाज़ के ज़ीरो बम में रूह असर की झलक साफ सुनाई दे रही है। कौन तख्लीक करने वाला है या कौन लिखने वाली है जो अपने साथ अपने दौर की आवाज़ नहीं लाता या लाती, जो जाने पहचाने जज्बों की गड़बड़ में अपने तजुर्बे से अपना हल तलाश नहीं करता। जाहिर है मैं आसी रामनगरी और आंसा नजर मोहम्मद का जिक्र नहीं कर रहा। मुझे याद पड़ता है कि कृष्णचंद्र ने जो अदीब तो शायद अंग्रेज़ी के एक मुहावरे के तर्जमे की रूह से गरीब आदमी के प्रेमचंद थे, पर औसत से कम दर्जे के तनकीद निगार थे। इस्मत चगताई के बारे में कुछ इस किस्म के फ़िक्रे लिखे थे कि इस्मत का नाम आते ही मर्द अदीबों पर दौरे पड़ने लगते हैं, आप ही आप खफीफ हुए जा रहे हैं। इस तरह से मर्द अदब और औरत अदब तय्यून करने का क्या मतलब? देखिए, अब मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अब तक मैंने जितने शेरों का हवाला दिया है, इससे हमारे पढ़ने वाले, अगर वो बुज़ुर्ग नस्ल के हैं तो आपकी निस्वानी बसीरत के, और अगर वो जवानों में हैं तो आपके निसाई महसूसात के कायल होकर आपको एक ऐसी मोहनी लड़की तसव्वुर कर लेंगे जो खूबसूरत फूल चुन रही है और उन्हें मुस्तकिल गुलदान में सजाए जा रही है। मैं ये किस तरह मानूं कि अदब में मर्द सिर्फ मर्दों ही की अक्कासी और तर्जमानी कर सकता है, औरतों की और बच्चों की नहीं, या बच्चियों की नहीं, या सिर्फ औरत ही अदब में औरतों के असली ख्यालात और जज्बात का इजहार कर सकती है? तुर्गेनियव की औरतें, टॉलस्टॉय की एना करेनिना, मिसेस गैस्किल के स्कूल मास्टर को देखिए। चलिए, ये क्लासिकी अदब ठहरा। मैरी मकासी, आईवी कम्प्टन बनेट, मार्गरेट ड्रैबल, ये सब हम असर लिखने वालियाँ हैं। चिली से लेकर रोमानिया और रोमानिया से लेकर जापान तक मर्द और औरत दोनों हर तरह से एक दूसरे के एहसासात को खोलते और पिरोलते हैं। क्या हम किसी औरत के औरतपन को इसलिए तस्लीम नहीं करते कि उसी किसी मर्द ने या मर्द नावल निगार ने तख्लीक किया है, या किसी मर्द की मर्दानगी से इसलिए मुनकर होते हैं कि वो आयरिस मर्डॉक का तख्लीक किया हुआ? मैं ज़रा बिखर कर बात कर रहा हूँ, जानबूझकर, इसलिए कि जब तक मैंने आपकी किताब को पूरी तरह न पढ़ा था, मुझे इस किस्म का मौहूम सा ख्याल रहा कि आपने अपनी हैसियत इन्हीं गिर्द पोश पर लिखे अल्फाज की मुनासिबत से तस्लीम कर ली है। मगर ये बहुत सतही ख्याल था। मैं जब इस शेर तक पहुँचा, मैं तेरा नाम लेके तजब्जुब में पड़ गई, सब लोग अपने अपने अजीज़ों को रो लिए। तो दो चीज़ें मेरे जहन में आईं, एक तो ये कि आपकी नज़र न सिर्फ शेर बनाने पर है बल्कि अपने यहाँ की हर हरकत पर है, और फिर आपका एक शेर है, सोचूं तो वो साथ चल रहा है, देखूं तो नज़र बदल रहा है। गो इन दो शेरों का बज़ाहिर कोई वास्ता नहीं, पर मुझे इन दोनों शेरों में वो गहराई नज़र आती है जो अपनी ज़ात से बाहर निकल कर मुशाहदा करने से ही मिल सकती है। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि मर्द और औरत की अदबी तकसीम नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये एहसास नहीं कि हमारे मुल्क में मर्द और औरत की खासी गहरी अलहदगी है, और लिखने वाले को बाज मुहर्रकात सिर्फ अपने अपने डिब्बों ही से मिल सकते हैं, मर्द को मर्दाने डिब्बे से और औरत को जनाने डिब्बे से। न मेरा मतलब ये है कि इस खलीज को देखते हुए अंदरूनी हैजानात को सामने नहीं लाना चाहिए। जूलियट की उम्र 14 साल है, लेकिन 14 साल की लड़की जूलियट का किरदार अदा नहीं कर पाती। ये बात कभी फुर्सत हुई तो वाजे करने की कोशिश करूँगा। जब मैं इस शेर पर आया, तुझे सुनाऊँ कि अपनी अना की बात सुनूँ, उलझ रहा है मेरे फैसलों का रेशम फिर, तो मैं झूम उठा। यहाँ एक ज़ाती मुशाहदा एक कायनाती चीज़ बन गया। ये एक ऐसा तजुर्बा है जिसके पीछे नफीस और तेज़ सोच भी है और अपनी जिंस से बाखबरी भी। ऐसा तजुर्बा और जगहों पर भी निखर कर आया है। शबनम के रुखसारों पर सूरज के होंठ, ठहर गया है वसल का एक रोशन लम्हा, और इसी की शिगुफ्ता और तर्रार और फैयाजाना कदर का मज़हर ये शेर, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। गालिब जैसे बड़े शायर से लेकर सीमाब अकबर आबादी तक शायद ही कोई हो जिसने महबूब की बेवफाई का दुखड़ा न रोया। इस शेर में असातिज़ा का रंग तो है ही, पर हरजाई के लफ्ज़ से प्यार की जो लिपटें निकलती हैं, इससे शेर कहीं का कहीं पहुंच गया। डरता हूं कि फिल्मों वाले ये सोचकर कि आपकी शायरी में तो हरजाई का जिक्र है, कहीं आपको फिल्मों के लिए लिखने पर मजबूर न करें। गज़लों की निस्बत मुझे आपकी नज़में कमज़ोर लगी, बेशतर नज़में एक तरह से अकहरी हैं और इनमें वो ख्याल और मकसद वैसे वैसे ही नज़र आता है जो शायर के ज़हन में तो ज़ाहिर होगा लेकिन जिसके इजहार में अकहरापन है। मैं गहराई और गिराई की बात नहीं इसलिए नहीं करता कि शायरी में गहराई इस तरह नहीं डाली जाती जैसे चाय में शक्कर। आपको याद होगा एक ज़माने में राशिद साहब ने लिखा, तू मेरी जान मेरे साथ कहाँ जाएगी, राह में ऊंचे पहाड़ आएंगे। और फिर उसके बाद यही राशिद साहब हैं जो इस रूमानवी नसीहत के बाद ये कहते हैं, मुँह कलम साज थिरकते पाँव, बात करने के बहाने हैं बहुत, आदमी किससे मगर बात करे। अब आप ही देख लीजिए कि इजहार और सोच में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना फ़र्क आया। आपकी एक नज़्म में जब मैंने ये सतरें पढ़ीं कि ख्वाब जो तजर्बा हैं ज़ात का, इनको जब फ़र्द की नींदों की नफ़ी करके लिखा जाए तो एक कौम का नाकाबिल तरदीद तशख़्ख़ुस बन जाएं, तो मुझे ये ख़्याल आता है कि ऊंचे सप्तक की नसर तो यकीनन है लेकिन इतना कुछ समझाने के बाद आपने मेरे लिए महसूस करने को कुछ भी नहीं छोड़ा, जज्ब करने को और भी कम। या जब आप कहती हैं, गए मौसम की शनासा खुशबू यूं रगों पे में उतरती है कि जैसे कोई चमकीला रुपहला सयाल जिसमें ऐसे सिरायत कर जाए जैसे सहराओं की शरियानों में पहली बारिश, तो मुझे उड़ान का एहसास ज़रूर होता है, पर लफ्ज़ों की उड़ान का, उजली मुकल्लफ नसर की उड़ान का। सोच के पीछे जज्बा और जज्बे के पीछे सोच एक चीज़ नहीं, लेकिन शायरी की कमाल हिस आप में मौजूद है और ये दोनों चीज़ें इस तरह के मिसरे में बड़े सुथरे रचाव से मिलती हैं। जलते खेमों की बुझती हुई राख पर बाल खोले हुए बीवियां रह गईं, वो लोग जो आपसे ऊंचा आदर्श और गुंजलक फ़लसफ़ा पेश करने की फरमाइश करते हैं उनसे वही सलूक ठीक है जो आपने भोलपन का खोल पहनकर अपनी नज़्म में किया है, वो लोग हमारे यहाँ के असली राक्षस हैं। मुझे इस ख्याल से खौफ आता है कि कहीं आप सबकी चहीती शायर न बन जाएं। ये मैं समझता हूँ बहुत ख़तरे की बात है, ये होगी। जिस सोच की आँच और जिस एहसास की शिद्दत से ये मिसरा निकलता है, बाल सुखाने के मौसम अनपढ़ होते हैं, उस एहसास में अभी बहुत शायरी बाकी है। एक छोटी सी बात कहूँ जो खटकती तो नहीं पर जिससे आपके कुछ कुल्लियात हतमी से मालूम होते हैं। आपका कहना है तीवर सुर अजाब लाते हैं, तीवर सुर सिर्फ अजाब ही तो नहीं लाते। श्री राग को फिर से सुनिए। हमारे यहाँ एक ख़ास रीत है कि कोमल सुरों को हुस्न के साथ मंसूब कर लिया गया है। मैं एक ख़ास मफरूज़े की बात कर रहा हूँ, आपकी संगीत विद्या की नहीं। मेरी दुआ है कि आप अपने उजले रेशम की बाहें और फैलाएं। नियाजमंद।